19वें श्लोक की चर्चा करेंगे, बल्कि आज से नहीं, आज, क्योंकि आज ही इसी श्लोक को समाप्त करना है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि 9वें से 11वें श्लोक में भाव और प्रेम भक्ति की चर्चा है, और विशेष करके 9वें श्लोक में भजनीय स्थल मध्य सर्वश्रेष्ठ है। तो भजनीय स्थलों में कौन सा स्थल सर्वश्रेष्ठ है ये बताने वाले हैं रूप गोस्वामी इस श्लोक में। और इसका छंद है, इस श्लोक का छंद है शार्दूल विक्रीडितम, इसका नाम है, इस छंद का नाम। जैसे पहले अनुष्टुप छंद था और उसके बाद कौन सा था, बसंत तिलक, और अब इस छंद का नाम है शार्दूल विक्रीडितम। क्या ये इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये परीक्षा के लिए नहीं है। वैकुंठात् जनितः वरां मधुपुरी तत्र अपि रास उत्सवात् वृंदारण्यम् उदारपाणि रमणात् तत्र अपि गोवर्धनः राधाकुण्डम् इह अपि गोकुलपतेः प्रेम अमृत आप्लावनात् कुर्यात् अस्य विराजतः गिरितटे सेवां विवेकी न कह। वैकुंठा जनितो वरां मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यमुदारपाणि रमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः। वैकुंठा जनितो वरमधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधा
राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी नकः
विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः वैकुण्ठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदार पाणि रमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी नः
अनुवाद और तात्पर्य अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है क्योंकि वहां कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तात्पर्य ज्यादा लंबा नहीं है। तो हम सारा तात्पर्य पहले पढ़ लेंगे, ठीक है? आज कौन पढ़ेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है? और जिन्होंने नहीं पढ़ा, किन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक? सबने पढ़ा है?
आध्यात्मिक जगत वैकुंठ भगवान के संपूर्ण सृष्टि के तीन चौथाई भाग में फैला है और यह अत्यंत पूज्य क्षेत्र है। आध्यात्मिक जगत स्वभाव भौतिक जगत से श्रेष्ठ है किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान प्रकट हुए थे। वृंदावन के विषयी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि ऐसे द्वादश बारह वन हैं, ताल वन, मधुवन, बहुला वन आदि जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक भाग मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है किंतु इस वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है क्योंकि कृष्णा ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधारा वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथ से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्णा अपने गोपमित्र के साथ गौवे चराते थे और वहीं पर अपनी प्रियतमा श्री राधा के साथ प्रेममयी लीला किया करते थे। गोवर्धन पर्वत के पादमूल पर स्थित राधा कुंड इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ कृष्णा का यह प्रेम उफना था रहता है। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना चाहते हैं, क्योंकि यह स्थान कृष्णा तथा राधा के पारस्परिक नित्य प्रेम व्यापार की स्मृतियां रति विलास का स्थल है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है कि
ठीक है, एक मिनट है। तो यहाँ पे क्रम से भजनीय स्थलों का वर्णन है। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले मथुरा नहीं, वृंदावन। सबसे पहले शब्द कौन सा है? वैकुंठा चनिता, वैकुंठ। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? मथुरा। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन। वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन। गोवर्धन से श्रेष्ठ राधाकुंड। राधाकुंड से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। राधाकुंड से और कोई श्रेष्ठ जगह नहीं है। अब ये श्लोक देखकर बताइए, वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा क्यों है? यहां क्या बताए? जनितः, जनितो, जनितः मतलब जन्म लेना। तो वैकुंठाज मतलब वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है मधुपुरी, क्योंकि जनितः वहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। स्वयं प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए थे, इसलिए मथुरा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। हालांकि वैकुंठ आध्यात्मिक जगत है, सारे सृष्टि का 3/4 भाग है, दिव्य है, चिन्मय है, फिर भी मथुरा जो कि इस भौतिक सृष्टि में प्रकट हुआ है, इस भौतिक सृष्टि के भीतर रहते हुए भी उस वैकुंठ जगत से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे। अच्छा, आप ऑलरेडी लिख रहे हैं, आप तो फिर ध्यान। अच्छा, लिखना एक मिनट बंद कर दी, नहीं तो आपका ध्यान वहां रहेगा, सुनने में नहीं रहेगा। श्लोक देखिए, अभी शब्द भेद करके हमें श्लोक को समझना है। तो हालांकि भौतिक सृष्टि से श्रेष्ठ वैकुंठ है, क्योंकि वैकुंठ दिव्य धाम है, आध्यात्मिक जगत है, फिर भी वो मथुरापुरी या मधुपुरी जो इस भौतिक जगत में प्रकट हो चुकी है, वहां पे भगवान प्रकट हुए, इसलिए मथुरा वैकुंठ से श्रेष्ठ है। आगे क्या कहते हैं रूप गोस्वामी? तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम। अरण्य मतलब वन, वृंदारण्य मतलब वृंदावन। वृंदारण्यम है वृंदावन का दूसरा नाम। तो तत्रापि, तत्र अपि, तो मथुरा से भी मधुपुरी से भी श्रेष्ठ है वृंदारण्यम। क्यों? रासोत्सवाद, क्योंकि रासोत्सव से अर्थात रासोत्सव के कारण, रासलीला जैसी सुंदर लीलाओं के कारण वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं कि साथ साथ में अनेक वन हैं, द्वादश वन, 12 प्रमुख वन हैं, जैसे ताल वन, बहुल वन, भांडीर वन आदि कितने सारे वन हैं। 12 प्रमुख वन माने जाते हैं, वैसे तो अनेक हैं। तो इन सब वनों में और विशेष करके वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रेममयी लीलाएं की। इसलिए वृंदावन मथुरापुरी से श्रेष्ठ है। तो यहां कहते हैं मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यम, और उसके बाद क्या कहते हैं उदार पाणी रमणात् तत्रापि गोवर्धनः। तत्रापि मतलब वृंदावन से भी श्रेष्ठ, तत्र अपि उससे भी अधिक श्रेष्ठ है गोवर्धन। क्यों? दो कारण क्या बताए हैं, उदार पाणी रमणात्, रमणात् मतलब रमण करने से या करने की वजह से। उदार पाणी जैसे भगवान का नाम है ना चक्रपाणी, चक्रपाणी जो चक्र हाथ में धारण करते हैं, तो चक्रपाणी तो उदार पाणी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर कमल से इस गोवर्धन पर्वत का स्पर्श किया, और केवल स्पर्श ही नहीं इस गोवर्धन पर्वत को उठाया और छाते की तरह ऊपर उठा के रखा, जिससे कि सारे वृंदावन के निवासियों की सुरक्षा हो गई इंद्रदेव ने भेजे हुए मूसलाधार वर्षा से। और दूसरा कारण क्या है, रमणात्, रमण भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन में क्या किया, रमण किया अर्थात लीलाएं की। किस प्रकार की लीलाएं की, कौन सी, अभी अभी जो हमने पढ़ा तात्पर्य में कौन सी दो लीलाओं का वर्णन है यहां, गाय चराते थे, चुराते थे या चराते थे, चराते थे। तो किन के साथ, ग्वाल बालों मित्रों के साथ वो गाय चराते थे, चुराते थे कुछ और, दही चुराते थे, बहुत कुछ और, लोग भक्तों का हृदय चुराते थे। तो ये एक प्रकार की लीला है जो श्री कृष्ण गोवर्धन पे करते थे, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गवों को चराना। दूसरी बात, श्रीमती राधारानी और अन्य गोपियों के साथ तरह तरह के प्रेममयी लीलाएं भी भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर करते थे। इसलिए उदार पाणी रमणात् तत्रापि गोवर्धनः, तो गोवर्धन वृंदावन से भी श्रेष्ठ है इन दो कारणों से। कौन से दो कारण, उदार पाणी, उदार पाणी उन्होंने गोवर्धन का स्पर्श किया उठाया, और दूसरा रमण उन्होंने लीलाएं की, तरह तरह की लीलाएं की वहां पर। लेकिन गोवर्धन पर बात समाप्त नहीं हुई। राधा कुंडम, राधा कुंड इह अपि, राधा कुंड इससे भी श्रेष्ठ है, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है। क्यों, गोकुलपते है, गोकुलपति श्री कृष्ण के प्रेम अमृत आप्लावनात्, आप्लावनात् मतलब जो बाढ़ है, जैसे अब कह रहे हैं लोग कि यमुना जी अभी ऊपर आ रही हैं, ऐसे सब पिछले एक दो दिन से सब जगह ये बात चल रही है कि अभी हमारी गौशाला तक पानी आएगा, ऐसे लोग कह रहे हैं। इसलिए हम भक्त लोग तैयारी कर रहे हैं, गांवों को कहां कहां ले जाएंगे, लोही बाजार तक पानी आएगी, हरियाणा में कोई हो कुछ खोल रहे हैं बांध, इसलिए यहां पर यमुना जी में पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहां कहा जा रहा है अब आपूरित होकर, तो गोकुलपते है मतलब गोकुलपति श्री कृष्ण के प्रेम के अमृत, प्रेम का जो अमृत है वो आपूरित होकर वहां पर प्रकट हुआ है, भर गया है राधा कुंड में। इसलिए राधा कुंड गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है। राधा कुंड है कहां, गिरी तटे, गिरिराज गोवर्धन के तट पे है। तो ये क्रम है, ठीक है। तो ठीक है, अब आप लिख सकते हैं चाहे तो, ये सारा क्रम यहां पे लिखा हुआ है, भजनीय स्थलों का क्रम। हमने यहां भौतिक जगत लिखा है, हालांकि श्लोक में भौतिक जगत का नाम नहीं है, परंतु तात्पर्य में एक जगह प्रभुपाद जी कह रहे हैं और ये बताने के लिए कि वैकुंठ वास्तव में श्रेष्ठ स्थान है, उत्तम स्थान है भौतिक जगत की तुलना में। तो नीचे से शुरू करिए, भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का एक चौथाई भाग है। अप्लावनात, हाँ नाथ, तात नहीं, नाथ होना चाहिए, न त नहीं, वो न होना चाहिए। रासो सवात, क्योंकि श्लोक में द है ना, कि वो संधि हो गया, इसीलिए रासोत्सवात। जब भेद किया जाता है तो रासोत्सवात हो जाता है। और जनितः, जनितः होना चाहिए, क्योंकि श्लोक में इस प्रकार से जनितो आता है, इसलिए यहां लिख दिया है जनितो, परंतु है शब्द जनितः। हाँ ठीक, वो आप्लावनात कर दो। ठीक से अच्छा अच्छा, और वहां अप्लावनात अन्ना न हो गया, ठीक है। तो यह है भौतिक जगत। भौतिक जगत से श्रेष्ठ है वैकुंठ, जो कि आध्यात्मिक जगत है। पेन जरा, तो ये वैकुंठ जगत आध्यात्मिक जगत है, संपूर्ण सृष्टि का तीन चौथाई भाग है, सर्वाधिक उन्नत क्षेत्र है। वैकुंठ का क्या मतलब है आप जानते हैं? जहां कुंठ नहीं है। कुंठ मतलब क्या? दुख, चिंता, कष्ट। तो मथुरा भगवान का प्राकट्य यही हुआ मथुरा में। अतः भौतिक जगत में होते हुए भी वैकुंठ से श्रेष्ठ है। वृंदावन, रासलीला यहां हुई थी, द्वादश वनों में भी लीलाएं होती हैं भगवान की, इसलिए वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है। हालांकि मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, लेकिन और कोई लीलाएं हुई नहीं। वृंदावन के बाद जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने कोई लीलाएं की, लेकिन जो सबसे मधुर लीलाएं हैं वो यहीं पर हुई, वृंदावन में। वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने कर कमल से पर्वत को उठाया। कृष्ण अपने गोप मित्रों के संग गाय चराते थे, श्रीमती राधा रानी से मिलते और प्रेममयी लीला करते गोवर्धन में। इसलिए गोवर्धन वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। और अंत में राधा कुंड, कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है ना, उफनता होना चाहिए, उफवता नहीं, न न होना चाहिए, उफनता मतलब बाहर आपूरित हो गया है। कृष्ण का प्रेम न न लिख दीजिए, उफवता उफवता नहीं है, न न है वो, वह नहीं है। कृष्ण का प्रेम पहले लाइन सबसे ऊंचे, उफनता। कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है, राधा कृष्ण के रति विलास की अनेक स्मृतियों का स्थल है, रति विलास की अनेक स्मृतियों का स्थल है ये राधा कुंड। अर्थात राधा कृष्ण की लीलाएं यहां पर अनेक हुई हैं। तो ये है क्रम, ठीक है। से लोग कहते हैं अरे यह इस शहर से हम उस शहर में जाएंगे, वहां पैसे ज्यादा मिलेंगे, और उससे अच्छा वो है हम दिल्ली जाएंगे बंबई जाएंगे, वो अच्छा है। फिर दिल्ली से भी श्रेष्ठ है कहां जाना, दुबई जाना, दुबई से भी श्रेष्ठ है अमेरिका जाना, है ना। तो यहां भी भौतिक जगत में हम लोग ऐसे तुलना करते हैं ना, कई लोगों के लिए अमेरिका ही गोलोक वृंदावन है, किसी न किसी तरह से पहुंच जाना है अमेरिका। ठीक है, आप सबने लिख लिया, अच्छा आप आगे पढ़िए।
चैतन्य लीला में कहा गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम वृंदावन भूमि के दर्शन किए तो वे राधा की स्थिति का पता नहीं लगा पाए। इसका अर्थ है कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड की वास्तविक स्थिति की खोज में थे, अंतर में जब उन्हें वह पवित्र स्थान मिल गया जहाँ पर एक छोटा सा ताल था, तो उन्होंने उस छोटे से ताल में स्नान किया और अपने भक्तों को बताया कि यही असली राधा कुंड है। बाद में भगवान श्री चैतन्य भक्तों द्वारा जिनमें शरद गोस्वामी तथा रूप तथा रघुनाथ दास आदि प्रमुख थे, इस समय वहाँ पर राधा कुंड नाम से एक विशाल सरोवर है। रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को इसीलिए इतना महत्व प्रदान किया है कि महाप्रभु इसे खोज निकालना चाहते थे। तब ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र वास करना चाहे। दिव्य बुद्धि से युक्तों को
हाँ ये सही है, यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, एक भजन है ना, यदि गौर ना हो तो तौबे की हो तो, आपने सुना है वो भजन, यदि गौरांग महाप्रभु न होते तो क्या होता। बहुत सारी चीजें नहीं होती, एक तो राधा कुंड क्या है किसी को पता नहीं होता। महाप्रभु जब आए यहां तो ब्रजभूमि में उन्होंने यात्रा की, भ्रमण किया और राधा कुंड गए, राधा कुंड की खोज में गए। उस समय वो गांव का नाम था अरिट ग्राम। अरिट ये अपभ्रंश है, अरिष्ट, अरिष्टासुर का वध हुआ था ना उस जगह में, तो वो अरिष्ट ग्राम था, लेकिन अरिष्ट से अरिट हो गया, तो अरिट ग्राम के नाम से वो जाना जाता था उस समय। और वहां केवल एक छोटा सा कुछ कुंड भी नहीं था, वो थोड़ा सी पानी वहां पे था बस, लेकिन महाप्रभु ने पहचान लिया कि ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। और फिर उन्होंने अपने गोस्वामी शिष्यों से कहा था कि आप जाके, उनको कई उन्होंने आदेश दिए, उनमें से एक आदेश ये था कि जितने भी श्री कृष्ण की लीला स्थली हैं उनका जीर्णोद्धार करना, उनको फिर से पुनः स्थापित करना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब वहां पे थे राधा कुंड के तट पे, तो वो सोच रहे थे कि यहां तो केवल थोड़ा सा जल ऐसे है, ठीक तरह से इसको स्थापना करने, घाट बनाने चाहिए, अच्छी तरह से ठीक ठाक करना चाहिए, निर्माण कुछ कार्य करना चाहिए यहां पर। तो सोचते सोचते फिर अचानक उनके मन में विचार आया कि अरे मैं यहां भजन करने आया हूं या मैनेजमेंट करने आया हूं। फिर सोचा नहीं नहीं ये सब भूल जाओ, मैं केवल अपने भजन में मस्त रहूंगा। उस दिन रात को एक बहुत अमीर व्यापारी थे, कहीं दूसरी जगह जा रहे थे, बद्रिक आश्रम में बहुत सारा धन दान देने के लिए जा रहे थे। तो उनके सपने में भगवान आए और कहने लगे कि मुझे देने के बजाय तुम ये जाके राधा कुंड ब्रज में, राधा कुंड में जाना और वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी नाम के महात्मा हैं, उनको ये दान दे देना राधा कुंड के लिए। तो जब ये व्यक्ति आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए और वो समझे कि हाँ ये मैनेजमेंट भी भगवान की इच्छा है और ये भी करना चाहिए, यही मेरा भजन है। तो कोई पूछ रहे थे ना उस दिन मैनेजमेंट के बारे में, कुछ आप सवाल कर रहे थे ना, सब कृष्ण के लिए होता है, जो कृष्ण को जो भी जिस कार्य से कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है, जो आवश्यक है कृष्ण की सेवा के लिए, वो करने के लिए तैयार होना चाहिए जो भी हो। ये सिद्धांत है, मूल सिद्धांत। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर कुछ किया, परंतु सबसे ज्यादा जो कार्य है वो जीव गोस्वामी ने किया राधा कुंड के बारे में। जितने भी राजा के अधिकारी व्यक्ति थे, अरिष्टासुर जैसे, तो जीव गोस्वामी ने सारे अधिकारी व्यक्तियों के साथ बैठकर सारे कागजात किए, जो भी कुछ करना पड़ता है, जैसे आप जानते हैं जमीन खरीदना है तो कितना कुछ करना पड़ता है, तो जीव गोस्वामी बाद में सब कुछ किया। तो फिर राधा कुंड प्रकट कराया महाप्रभु ने और उनके शिष्यों ने, और उनकी वजह से आज दुनिया जानती है कि राधा कुंड कहां है और ये क्या है, उसका महत्व क्या है। इसको घुमाइए, इसको घुमा लेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा कुंड, जो अभी आपने परिच्छेद पढ़ा उसका सार है ये। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही स्वयं राधा कुंड का सही स्थान बतलाया, उन्होंने वहां स्नान भी किया। महाप्रभु के भक्तों रूप रघुनाथ द्वारा इस ताल की खुदाई करवाई गई, रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को आध्यात्मिक महत्व प्रदान किया है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इसे खोज निकालना चाहते थे। इसका मतलब क्यों महाप्रभु खोज निकालना चाहते थे? क्योंकि वो जानते थे कि इसका महत्व क्या है। तो रूप गोस्वामी जानते हैं कि महाप्रभु का जो मत है उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादर न परह, कि चैतन्य महाप्रभु के मत से अधिक और हम किसी अन्य मत का सम्मान नहीं करते हैं, बस यही सर्वश्रेष्ठ है, हम सबके लिए पर्याप्त है। तो चैतन्य महाप्रभु इतना महत्व दे रहे हैं राधा कुंड को, ये जानकर रूप गोस्वामी ने भी इसको बहुत महत्व दिया है और इस श्लोक में हम इसी बात को देख रहे हैं। राधा कुंड मुख्यतया गौड़ीय वैष्णवों द्वारा पूजित है जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो लिख लिया आप सबने? ताल मतलब ताला, ताल। फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कुरियात अस्य विराज तो गिरि तटे सेवाम विवेकी न कह। कह मतलब कौन, कौन ऐसा विवेकी पुरुष है जो कि गिरि तटे, जो गिरि के तट में जो राधा कुंड है विराजतः अपने आप को स्थित करके कुर्यात् अस्य वो सेवाम, ऐसे वो राधा कृष्ण की सेवा नहीं करेगा। ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति है जो ऐसा नहीं करेगा? तो राधा कुंड में रहने की बात रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति करेगा वो वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली है। परंतु अभी हमें वहां जाके रहने की सोच, रहने का विचार नहीं करना चाहिए। राधापुर में केवल जाना है, बहुत ही दर्शन, अच्छी तरह से दर्शन करके भक्तों के संग में अच्छी तरह से अपनी साधन करके फिर चले आना है। अधिक समय भी नहीं रुकना है। तरह तरह के लोग वहां पर होते हैं, बाबा जी ये, बाबा जी वो, बाबा जी उनकी सब अलग अलग भिन्न भिन्न धारणाएं होती हैं भक्ति के बारे में। उनमें से कई ऐसे हैं जो हमारे संप्रदाय को भी नहीं मानते हैं, इसलिए अधिक समय वहां रहना भी उचित नहीं है। वहां के लोगों के साथ उठना बैठना भी इतना ठीक नहीं है, केवल दूर से सम्मान करके चले आना है। वो अगले श्लोक में देखें, स्नान करना ही नहीं करना। वो लोग भी गौड़ीय वैष्णव हैं, परंतु उनकी धारणा अलग है। ठीक है, लिख लिया ना? वैकुंठ मतलब दुख नहीं।
उससे श्रेष्ठ मतलब
प्रश्न ये है कि बताया गया है कि मथुरा वैकुंठ से श्रेष्ठ है, वैकुंठ में कोई दुख नहीं, लेकिन मथुरा में वृंदावन बहुत दुख है। यही प्रश्न है। सच्चे वृंदावन में दुख नहीं है। हम जो देख रहे हैं वो माया का वृंदावन है। सच्चा वृंदावन तो केवल शुद्ध हृदय अनुभव कर पाएगा। विषय छाड़िए कभी शुद्ध होगे मन, तबे हम हेरबो श्री वृंदावन। तो ये हुई नौवें श्लोक की चर्चा। अब दसवें श्लोक की चर्चा। ये भी शार्दूल विक्रीडितम छंद में है, जैसे नौवां श्लोक था। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इस श्लोक का विषय है भजन कारीर मध्य सर्वश्रेष्ठ। भजनकारी व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, या तो फिर व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कर्मेभ्यः परितः हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुः ज्ञानिनः तेभ्यः ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेम एक निष्ठा ततः तेभ्यः ताः पशुपाल पंकजदृशः ताभ्यः अपि सा राधिका प्रेष्ठा तद्वत् इयम् तदीय सरसी तां न आश्रय कह कृति। कर्मेभ्यः परितो हरः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्तः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं त्वदीय सरसीतां नाश्रयेत् कः कृति। कर्मेभ्यः परितो हरः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्तः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं त्वदीय सरसीतां नाश्रयेत् कः कृति। कर्मेभ्यः परितो हरः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्तः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं त्वदीय सरसीतां नाश्रयेत् कः कृति। कर्मेभ्यः परितो हरः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्तः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका
निष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसीतां नाश्रये कः कृति।
अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यावहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों में उत्कृष्ट हैं, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है। जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी, तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निस्संदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जैसे नौवें श्लोक में स्थानों का क्रम दिया गया था, यहां पर व्यक्तियों का क्रम दिया गया है। यहां तरह तरह के व्यक्तियों का वर्णन है, श्रेणियां अलग अलग हैं, कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं और फिर भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ आगे पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा,
इस समय प्राय हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है। जो लोग कर्म करके बहुत ही लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी हैं।
हाँ, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। कर्मी की परिभाषा क्या है? जब हम कहते हैं कर्मी है, कर्मी मतलब कौन?
सकाम कर्म में
जो भौतिक लाभ उठा, जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वो कर्मी कहलाते हैं। आप केवल तात्पर्य को पढ़ते जाइए।
इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के वश में है। विष्णु पुराण में इसका वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परापुरुषा क्षेत्रज्ञाक्ष तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीय शक्ति दृश्यते। मुनिया ने भगवान की शक्ति को तीन कोटियां में विभक्त किया है, आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी की शक्ति और तृतीय शक्ति माना जाता है। जो प्राणी भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर है वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए ऊपर सुपर की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं, किंतु इस जीवन में जा पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेद में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्य के आधार पर ही वे स्वर्गलोक को जाते हैं। वास्तव में जो लोग वैदिक आदर्श के अनुसार यज्ञ करते हैं वे चंद्रलोक तथा उससे ऊपर के लोक को जाते हैं। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, निर्णय पुण्य मध्य लोक विसंति, अपने तथा कथित पुण्य कर्म के क्षीण होने पर वे पुनः पृथ्वी में लौट आते हैं, जो मध्य लोक कहलाते हैं। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्म से स्वर्ग जाते हैं और वहाँ हजार वर्ष तक जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्म के क्षीण होने पर इस लोक में लौटना पड़ता है।
ठीक है, तो यहाँ कर्मियों का वर्णन है। कर्मियों में दो प्रकार के लोग होते हैं, दूसरे प्रकार के लोग का वर्णन अगले परिच्छेद में आएगा। कर्मी शब्द की परिभाषा क्या है? जो भौतिक लाभ के लिए कार्य करते हैं, ठीक है ना, बहुत सरल है। जो लोग पुण्य मार्ग से भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उनको भी कर्मी कहते हैं। तो कर्मी एक साधारण शब्द है, जो भी व्यक्ति भौतिक लाभ अपने कार्यों द्वारा प्राप्त करना चाहता है उसे कर्मी कहते हैं। विशेष करके कर्मी भी उसे कहते हैं जो पुण्य के पथ को अपनाकर भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। और ऐसे जैसे यहां बताया गया है, वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होता है, इस प्रकार अपने पुण्यों के बल पर वे स्वर्गलोक को भेजे जाते हैं। तो ऐसे कर्मी पुण्य के द्वारा, यज्ञ आदि संपन्न करने के द्वारा स्वर्गलोक में जाते हैं, परंतु स्वर्गलोक में जाके क्या होता है, पुण्यों का भोग करते हैं और पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर से लौटकर आना पड़ता है। तो ये है एक प्रकार का कर्मी, जिसे कर्मी ही कहते हैं। और दूसरे प्रकार के कर्मी, इनका वर्णन भी आगे है, परंतु उसके पहले और इस पुण्यवान कर्मी की चर्चा हो रही है। हाँ जी, पढ़िए।
यह स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है, चाहे वे पुण्य करने वाले हो या पाप करने वाले। इस लोक पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। वे सभी प्रकार से अच्छे या बुरे का ध्यान न रखते हुए धन कमाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकवादी कहलाते हैं। इस कर्मियों जैसे कुछ विकर्मी होते हैं, जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं।
हाँ ठीक है, तो दूसरे प्रकार के कर्मी कौन से हुए? विकर्मी। एक प्रकार के कर्मी हैं कर्मी, दूसरे प्रकार के कर्मी हैं विकर्मी। तो ये कर्मी और विकर्मी में अंतर क्या है? दोनों धन कमाना चाहते हैं। एक वैदिक शास्त्र के आधार पर यज्ञ आदि करके धन प्राप्त करना चाहता है, और ये विकर्मी क्या करता है? वैदिक शास्त्रों का पालन नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। हाँ आगे पढ़िए।
जो लोग वेद के अनुसार कर्म करते हैं, ये भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, इस प्रकार के स्वर्ग जाते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे वैदिक निर्देश के प्रति आज्ञाकारी बन रहते हैं।
हाँ, तो जो सकाम कर्मी होते हैं, जो कर्मी होते हैं, वो विकर्मियों से श्रेष्ठ क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने कार्य वेदों शास्त्रों के आधार के अनुसार ही कर रहे हैं।
हाँ, निश्चय ही कृष्ण के प्रिय हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जे जथामान प्रपद्यताम तथैव भजामि अहम्। जो जिस रूप में मेरी शरण आता है उसे मैं तदनुसार फल देता हूँ। कृष्ण के इतने दयालु हैं कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं, तो फिर भक्तों के विषय में क्या कहना। यद्यपि कर्मीजन कभी कभी स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु जब तक वे सकाम कर्म के प्रति अनुरक्त रहते हैं तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन देह धारण करनी होती है।
किन के बारे में है ये, कर्मी या विकर्मी? ये कर्मी के बारे में चर्चा हो रही है। हाँ, फिर आगे।
यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्गलोक में वह यहाँ तो देवताओं के मध्य में नवीन शरीर धारण करता है या सुख भोग कर भोग सकता है। दूसरी बात, जो लोग पाप कर्म में लगे हैं वे पतित होकर पशुओं, वृक्षों तथा पौधों के रूप में जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेश की परवाह नहीं करते विकर्मी वे विद्वान साधु पुरुष द्वारा प्रशंसित नहीं होते।
फिर से विकर्मी की बात हो रही है और साधु पुरुष उनकी प्रशंसा करते हैं? नहीं करते। ठीक है।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है नीनम प्रमतम कूते विकर्म जत इंद्रिय हृदय
अप्रणोति
न साधु मन्ये जत आत्मन अयम सम्मपि क्लेशर आसते। भौतिकवादी लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए शुकर शुकर की तरह कार्य करते हैं वे वास्तव में पागल हैं। वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए है ऐसे गहिर कार्य करते हैं। भौतिकवादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सर्वथा योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को ऐसा शरीर मिलता है जो दुखमय होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य तीन प्रकार के तापों से बाहर निकलना है जो संसार के साथ लगे हुए हैं। दुर्भाग्य व सकाम कर्मी धन कमाने तथा जेना केना प्रकार यानी भौतिक सुख सुविधा पाने के पीछे पागल हुए रहते हैं। अतः ये निम्न जोनिया में पतित होने का संकट मोल लेते हैं।
ये भी विकर्मियों की बात हो रही है ना? आगे बढ़िए।
भौतिकवादी लोग इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए मूर्खतावश अनेक योजनाएं बनाते हैं। वे यह नहीं सोचते हैं कि उन्हें कुछ ही वर्ष जीवित रहना है, जिसका अधिकांश भाग इंद्रिय तृप्ति के लिए धन अर्जित करने ही बीत जाएगा। अंतर्गत ऐसे कर्म मृत्यु के साथ भरे के भरे रह जाएंगे। वे यह नहीं मानते कि ही इस शरीर को जागने पर वे निम्न पशुओं या पौधे का शरीर धारण करेंगे। इस तरह उनके सारे कार्य जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाले हैं। वे न केवल अज्ञानी हैं, अज्ञान के रूप में उत्पन्न होते हैं, अपितु अज्ञान के धरातल पर यह सोचते हुए कर्म भी करते हैं कि वे गगनचुंबी प्रसादों, बड़ी बड़ी मोटर कार, सम्मानीय पौधों आदि आदि के रूप में भौतिक लाभ की भी प्राप्त कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि अगले जन्म में वे पतित होंगे और उनके सारे कार्यकलाप उनके पराभव स्वरूप होंगे। यही श्रीमद् भागवत का निर्णय है, पराभव स्थावत अवध जात।
ठीक है। तो यहाँ अब विकर्मियों का वर्णन है। कर्मी और विकर्मी, बहुत ही सुंदर वर्णन श्रील प्रभुपाद ने किया है, क्योंकि इस श्लोक के पहले ही शब्द था कर्मिभ्यः, कर्मियों से श्रेष्ठ हैं और कोई, उनके बारे में चर्चा आगे करेंगे, ज्ञानी हैं। परंतु ये कर्मी हैं कौन, इनका वर्णन प्रभुपाद जी ने अब तक इस तात्पर्य में किया है, इसको जरा घुमाएंगे। तो अब तक जो तात्पर्य में पढ़ा गया है ये सारांश रूप में इस चार्ट में प्रस्तुत है। हाँ, ये ठीक है। इसके पहले भी कुछ है क्या? नहीं, ठीक है, ये ठीक है। ये इस श्लोक में जो लिखा है इसका क्रम है संक्षेप में,
ठीक है।
विकर्मी, विकर्मी से श्रेष्ठ है कर्मी, ज्ञानी होना चाहिए बीच में, ज्ञानी मिस हो गया, ज्ञानी
ठीक है,
कर्मी फिर ज्ञानी फिर भक्त फिर प्रेमी भक्त गोपी और श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड।
नहीं नहीं, भक्त भी होना चाहिए,
ज्ञानी भी बीच में और एक, हाँ तो वो हाँ नया कैटेगरी होना चाहिए। ऐसे बॉक्स कर दीजिए इसको, और भक्त भी ठीक है उसको काटिए मत, फिर से लिख दीजिए भक्त अलग से लिख दीजिए। हाँ विकर्मी कर्मी ज्ञानी भक्त प्रेमी भक्त गोपी श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड, ये क्रम है। पशुपाल पंकज दृशः, गोपियों का वर्णन है ना, और प्रेमैक निष्ठा, प्रेमी भक्त का वर्णन है। ज्ञान विमुक्त भक्तपरा, भक्तपरम भक्त का वर्णन। लिख लिया आपने, अब इनमें जितने भी वर्ग हैं एक दो तीन चार पांच छह सात, इनका अलग अलग से अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले विकर्मी और कर्मी, इन दो श्रेणियों की चर्चा करेंगे जो कि अब तक हमने तात्पर्य में पढ़ लिया है, ठीक है। इसको घुमा लेंगे, एक मिनट। विकर्मी कर्मी ज्ञानी भक्त प्रेमी भक्त, हाँ साइड में नहीं, हाँ ज्ञानी के साइड में ये ज्ञान अभिमुक्त है और भक्त के साथ है भक्त परम। करता है फिर वो भक्त की अवस्था में पहुंच जाता है और उस समय भक्त पर, ये ज्ञान विमुक्त भक्त परम, ये भक्त को संबोधित करता है। भक्ति परम, हाँ घुमाइए। अच्छा, अभी कर्मी, कर्मी कौन है, कर्मी कौन है, जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें कर्मी कहते हैं। तो कर्मी दो प्रकार के होते हैं, कर्मी और विकर्मी। तो जो भी अब तक हमने पढ़ा है इस तात्पर्य में बस इसी को यहां लिखा गया है। कर्मी पुण्य करने वाले उनको कर्मी कहते हैं, विकर्मी पाप करने वाले होते हैं। कर्मी वैदिक निर्देशनों के प्रति आज्ञाकारी होते हैं, अतएव वे विकर्मियों से श्रेष्ठ हैं। केवल तात्पर्य के अलग अलग पॉइंट लगाकर इनको बिठा दिया है यहां पर। कर्मी जन जो होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। कर्मकांड, तो भगवान विष्णु के तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ आदि अनुष्ठान संपन्न करते हैं। ठीक है, अपने पुण्यों के बल पर स्वर्ग लोक भेजे जाते हैं, परंतु इन फलों के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। जब तक सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं ऐसे कर्मी, उन्हें बार बार भौतिक देह धारण करते रहना पड़ता है। भले वो वेदों के आदेशों का पालन कर रहा हो, परंतु जब तक ये सकाम कर्म की वृत्ति रहेगी, अपने कर्मों के फल से वह आसक्त होंगे, कर्मों के द्वारा भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा होगी मन में, तब तक उन्हें बारंबार नवीन भौतिक देह धारण करते रहना होगा। ठीक है, तो ये हुई कर्मियों की चर्चा। अब रही बात विकर्मियों की। विकर्मी पाप करते हैं, वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वो पाप करते हैं इसलिए पतित होकर पशुओं वृक्षों तथा पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। वे विद्वान पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते हैं। यहां भागवत का श्लोक कहा गया है ना, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, उसमें इस बात की पुष्टि की गई है। इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए मूर्खतावश अनेक योजनाएं बनाते हैं ऐसे विकर्मी लोग। ठीक है, लिख लिया। पांच पांच चार नूनम प्रमत्तः कुरुते। विकर्मी से श्रेष्ठ है कर्मी, कर्मी से श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। तो अब आने वाले अब अगले दो परिच्छेदों में श्रील प्रभुपाद जी ज्ञानी की चर्चा करते हैं। हाँ, तुष्टि के लिए। हाँ, तथा उनसे नहीं, वैसे कर्मकांड के जितने भी कार्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उनके मुख्य भोक्ता कौन होते हैं? विष्णु होते हैं। देवतागण भी आते हैं अपना अपना भाग लेने के लिए, यज्ञों वही विष्णु हो। तो आपने पढ़ा होगा भागवत में भी अन्य ग्रंथों में, यज्ञ होता है तो भगवान आते हैं लेने के लिए, अपना फल लेने के लिए आते हैं। हालांकि कभी कभी जो कर्मीजन होते हैं, भले उनको स्पष्ट ज्ञान हो भी नहीं कि विष्णु को संतुष्ट करना है, वो यज्ञ करते हैं, परंतु वो ऐसे यज्ञ करते हैं वास्तव में जिनका उद्देश्य है विष्णु को प्रसन्न करना। कभी कभी वो लोग नहीं जानते हैं इस बात को, परंतु वो यज्ञ का उद्देश्य वास्तव में वो होता है। और साथ साथ ऐसे यज्ञों को संपन्न करके कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए अब अगले दो परिच्छेद पढ़ते हैं जिसमें ज्ञानियों का वर्णन है। अतः मनुष्य को आत्मा का विज्ञान वहां से।
अतः मनुष्य को आत्मा का विज्ञान आत्मा तत्व जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जब तक मनुष्य आत्मा तत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिससे वह यह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं अभी तो आत्मा है, तब तक वह अज्ञान के स्तर पर रहता है। ऐसे लाखों अज्ञानी जो अपनी इंद्रिय की दृष्टि में ही सारा समय गुमाते रहते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति ज्ञान तथा जीवन के उच्चतर मूल्यों को प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्म उसे संसार में बांध देंगे और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य करेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में शरीर बद्ध के संकेतित है, जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई भी धारणा रखता है तब तक उसका मन कर्म में प्रभुत्व रहता है। इसे हुआ एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह कम से कम इंद्रियों भोग के अंध कार्यकलाप से तो बचना बचता है।
अच्छा, तो ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? शरीर आत्मा के अंतर को जानता है और कम से कम इंद्र तृप्ति के कार्य को त्यागता है। ये जानता है कि इससे उसका क्या होगा, बंधन होगा, उसे और एक भौतिक देह प्राप्त करना होगा, इसलिए वो कर्मी से अधिक बुद्धिमान होता है। आगे पढ़िए।
ये भगवान का निर्णय है, यद्यपि ज्ञानी कर्मियों के अज्ञान से मुक्त हो सकता है, जब तक हुआ भक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो अज्ञान अविद्या में माना जाता है।
हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, भले वो ज्ञानी कहलाए, ज्ञानी मतलब जिसका ज्ञान है, परंतु जब तक वो भगवान की भक्ति के स्तर में नहीं आता तब तक उसे अज्ञानी ही मानना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। ठीक है, हाँ पढ़िए।
नहीं, कोई ज्ञानी मान लिया जाए किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का पता नहीं रहता है। और इस तरह भगवान के चरण कमल की प्रत्यक्ष सेवा की उपेक्षा करता है।
अविशुद्ध बुद्धयः, बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, अनादृत युष्मदंध्रयः, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का अनादर किया हुआ होता है। तो ठीक है, ज्ञानी का वर्णन चार्ट रूप में हम देखेंगे। जो भी इन दो परिच्छेदों में हमने पढ़ा है इसको सारांश में यहां लिखा गया है। ज्ञानी आत्मतत्व का विज्ञान समझता है। आत्मतत्व अर्थात शरीर और आत्मा का अंतर भलीभांति इसको जान लेता है। फिर जानता है कि सकाम कर्म उसे संसार से बांध देगा, इसलिए सकाम कर्म नहीं करना चाहता, इसलिए सकाम कर्मी से वो श्रेष्ठ है। इंद्रिय भोग के कार्यों को नहीं करता, अतएव कर्मी से श्रेष्ठ है। फिर भी जब तक वह भक्तिमय सेवा के स्तर तक नहीं पहुंचता तब तक वह अज्ञान में स्थित है, स्थित होता है, समझना। जब वह भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है।
Thank you.
अच्छा अब आगे जब ये ज्ञानी अंतिम यह बात क्या है, जब वो भक्ति में सेवा में लग जाता है तब क्या होता है, ज्ञानियों में से श्रेष्ठ हो जाता है। तो अब ये फिर वो भक्त बन जाता है। तो अब ये भक्त की अवस्था, इसका वर्णन अगले परिच्छेद में है, पढ़िए।
जब ज्ञानी भक्ति करता है तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा सहुन्नत व्यक्ति ज्ञान विमुक्त भक्ति परम कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्ति ग्रहण करता है उसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं, बहुना जन्मना अंते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सोमात्मा सुदुर्लभ। जो अनेक जन्मांतर के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारण का कारण यह सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में वही चतुर पुरुष है जो कृष्ण के चरण कमल की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है।
तो अभी ज्ञानी भक्त बन गया, लेकिन किस प्रकार का भक्त बन गया? अभी साधारण भक्त है, हालांकि उन्नत है, लेकिन फिर भी विधि विधानों का पालन कर रहा है, वैधी भक्त है। और इसलिए यहां पहले अगले परिच्छेद में पहले ही लाइन में यह कहा गया है। इसलिए जो भक्त और प्रेमी भक्त दो अलग वर्णन दो वर्ग किए गए थे ना, तो पहले श्रेणी वर्ग में व्यक्ति विधि विधानों का पालन करता है। आगे पढ़िए अगला परिच्छेद।
विधि निषेध के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद नारद तथा सनक सनातन जैसे परम भक्त के पद चिन्ह पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पत्र को प्राप्त कर सकता है, तब भगवान उसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है वे निश्चय ही पूज्य पद पर है।
हाँ, तो यहाँ दो प्रकार के भक्तों की बात हुई है, एक जो भले सउन्नत हो लेकिन विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, और जब वो सनक सनातन और नारद मुनि जैसे भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हैं तो फिर वो प्रेमी भक्त बन जाते हैं, उच्च कोटि के स्तर को प्राप्त करते हैं। ठीक है। हाँ, तो अगले चार्ट में इनका वर्णन है, भक्त और प्रेमी भक्त। तो भक्त के बारे में क्या लिखा है, विधि विधानों के अनुसार भक्ति करते हैं। नारद सनक सनातन का अनुसरण करके सहज कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है ऐसा व्यक्ति। और जब पालन करता है तो फिर वो प्रेमी भक्त बन जाता है, फिर वो अगले स्तर में आ जाता है। आप समझ रहे हैं ना? प्रेमी भक्त शुद्ध कृष्ण प्रेम विकसित कर लिया होता है, स्वाभाविक सहज प्रेम शुद्ध। सुप्त ने सहज प्रेम, स्वाभाविक रूप से आकर्षण होना भगवान के प्रति, आसक्ति होना, तो ये प्रेमी भक्त हैं। तो इसलिए भक्त और प्रेमी भक्त। तो अब तक कौन से श्रेणियों का वर्णन हुआ है? पहले विकर्मी, कर्मी, ज्ञानी, भक्त, प्रेमी भक्त, ठीक है। और आगे प्रेमी भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो आगे पढ़िए।
समस्त भक्तों में गोपियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं।
क्यों?
क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती, ना ही वे कृष्ण से बदल में कुछ आशा करती हैं। निसंदेह कभी कभी कृष्ण ही उन्हें उनसे अपने को विलग करके उन्हें अति विभष्ट प्रदान करते हैं, फिर भी ये कृष्ण को भूल नहीं सकती। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो गोपियां अत्यधिक निराश हो गई और उन्होंने अपने शेष जीवन कृष्ण को कृष्ण के वियोग में रो रो कर बिता दिया। इसका अर्थ है यह हुआ कि एक तरह से वे वास्तव में कृष्ण से विलग नहीं हुई। कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। प्रतीत विप्रलम्ब सेवा जो वियोग में कृष्ण का चिंतन है और जैसा इसकी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से श्रेष्ठतर है।
ठीक है। तो जितने भी प्रेमी भक्त हैं, जिनका स्वाभाविक और सहज आकर्षण और प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? वृंदावन की गोपियां। तो इनके लक्षण क्या हैं जिनके वजह से वो श्रेष्ठ कहलाती हैं? घुमाएंगे। ये है गोपियों का लक्षण, के लक्षण जितने हैं जिनका वर्णन यहां इस परिच्छेद में श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। गोपियां अनन्य कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले भक्तों में से गोपियां श्रेष्ठ हैं। तो पहले की श्रेणी कौन थे? प्रेमी भक्त, अनन्य प्रेम विकसित करने वाले उनकी श्रेणी थी। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो हैं ब्रज की गोपियां। कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती हैं, बदले में कुछ आशा भी नहीं करती हैं। ये उनके गुण हैं। कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हैं और अपनी सेवा के लिए सेवा के बदले में भी कुछ नहीं चाहते हैं। शुद्ध प्रेम की चरम सीमा। बिल्कुल स्वार्थ नहीं, कृष्ण को भूल नहीं सकती हैं। हालांकि कृष्ण समय समय पर उनसे दूर चले जाते हैं, जैसे कि यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं, निस्संदेह कभी कभी कृष्ण ही उनसे अपने को विलग करके उन्हें अतीव कष्ट प्रदान करते हैं, फिर भी वे कृष्ण को भूल नहीं सकती हैं। तो ये उनका स्तर है। और ऐसे वियोग में या विरह में जो सेवा की जाती है उसे विप्रलम्ब सेवा कहते हैं। और क्योंकि वियोग में भी वो कृष्ण को कभी भूलती नहीं थी, कृष्ण का सदैव स्मरण करती थी, इसीलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण से कभी वो अलग ही नहीं हुई। विप्रलंब सेवा अर्थात वियोग में कृष्ण का चिंतन, यह प्रत्यक्ष सेवा करने से श्रेष्ठ है, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गोपियों का भाव, ये जो विप्रलंब सेवा का भाव है, ये सर्वश्रेष्ठ है। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। ठीक है, आपने लिख लिया। ठीक है, अभी आगे पढ़िए। ठीक है, अच्छा इसको जरा घुमाइए। तो गोपियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड, समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च हैं। उनकी भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। यहां तक कि कृष्ण भी उनके भाव को समझ नहीं पाते, अतएव वे राधा भाव स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। देखिए राधा रानी का स्थान कितना ऊंचा है, कितना विशेष है। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का कुंड, राधा कुंड, सर्वाधिक पूज्य स्थल है। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च भक्त हैं, वैष्णवी हैं, उसी प्रकार से उनका कुंड राधा कुंड सर्वाधिक पूज्य स्थल है। और निष्कर्ष ये बनता है इस श्लोक का कि उन्नत भक्त को राधा कुंड का आश्रय लेकर वहीं जीवन भर सेवा करना चाहिए, करनी चाहिए। वे ब्रह्मांड के सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ठीक है, मेरे किताब में तो नहीं है ये, इसमें तो नहीं है, कहाँ है ये? प्रत्युत विप्रलंब सेवा जो वियोग में कृष्ण का चिंतन है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से बेहतर है। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति प्रेम विकसित किया है, उनमें गोपियां श्रेष्ठ हैं और इन उच्च गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। हाँ, यहाँ इसमें नहीं है, वो पुराना होगा किताब, उसके बाद कहीं इसमें नहीं है। इसमें केवल अनन्य भक्ति प्रेम विकसित किया जाए ऐसे लिखा है। हाँ, कौन सा शब्द? अनन्य भरणी, अन्य अन्याभिरणी, अद्वितीय, शायद इसलिए दूसरे संपादन में इसको काट दिया होगा। अच्छा, अंतिम चार लाइन पढ़िए अभी इस तात्पर्य के निष्कर्ष। श्री राधा कुंड की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। समझ लीजिए कि ये सबसे ऊंचे स्तर तक हमें ले गए हैं रूप गोस्वामी। अभी और 11वें श्लोक में भी थोड़ा कुछ बचा है, तो वो कल के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, क्या समय हुआ अभी? कौन है सर? हाँ,
जैसे इससे पहले हमने चर्चा किया था कि जो लोग राधा कुंड में वास करते हैं, अलग अलग भाव में भगवान की सेवा करते हैं, तो अलग ही गौड़ी संप्रदाय में, लेकिन अलग अलग भाव इससे पहले अलग अलग
सिद्धांत उनके थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं,
तो उनकी क्या गति है?
उनकी क्या गति है जो राधा कुंड में रहे कि अलग अलग धारणाओं से युक्त होकर भक्ति करते हैं? यथा धारणा तथा गति। अलग अलग धारणा है, वैसे वैसे उनकी गति होगी, कौन प्रामाणिक है कौन नहीं है, और वहां रह के भी कोई ठीक से नहीं कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें राधा कुंड से दूर ही रहना चाहिए, केवल जाना चाहिए दर्शन के लिए, परिक्रमा के लिए, वहां से जाकर फिर आना चाहिए, वहां रहने वाले लोगों से निकट से संबंध नहीं रखने चाहिए। राधा कुंड में स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, ये प्रश्न तो आना ही था ना। तो राधा कुंड में स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब देखते हैं आप में से कितने लोग, कितने भक्त कहते हैं कि करना चाहिए, आप जाएंगे तो करना चाहिए, हाथ ऊपर दीजिए। जो भी है तरीका, जो भी हो, लेकिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कितने? अच्छा, नहीं करना चाहिए? कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं? हमारे शरीर इसमें श्रेष्ठ है, गुरु जैसा आदेश करते हैं वैसे करिए। पहले तो प्रभुपाद जी ने कहा था भक्तों से स्नान करो, लेकिन जब भक्त वहां गए तो जैसे कुसुम सरोवर में स्नान करते हैं ना, ऊपर से छलांग मार के, तो वैसे सब स्नान करने लगे राधा कुंड में। तो प्रभुपाद जी चिंतित हो गए कि अरे ये राधा कुंड है, ये लोग इसको क्रीड़ा का स्थान समझ रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उस दिन के बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब स्नान नहीं करना। तो हमें जानना चाहिए कि किस भाव से प्रभुपाद जी ने उनको स्नान करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उस समय वो कैसा व्यवहार वहां कर रहे थे, ताकि आगे चल के भी भक्त लोग ऐसे सहज राधा कुंड के स्नान को न लें, इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसे एक चेतावनी उस समय दी थी। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और क्योंकि जब एक खुला नियम बन जाता है कि चलो कोई भी स्नान कर लेगा, तो फिर ऐसे ही एक खतरा होता है, इसलिए कई वरिष्ठ भक्त चेतावनी देते हैं कि नहीं करो तो अच्छा है, अधिक से अधिक जाके तीन बूंद पानी सर पे रख लेना या थोड़ा आचमन कर लेना। कई बार कोई वरिष्ठ गुरुजन होते हुए कहेंगे ठीक है स्नान करो, लेकिन बड़े सावधानी से, बड़े भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, ऐसा नहीं कि वहां हम बिल्कुल हाथ पैर फैलाकर इधर कुछ करें, बस डुबकी लगाकर तीन बार राधा कुंड में, फिर श्याम कुंड में, फिर से राधा कुंड में करके आए, ठीक है?
ऐसे कहा गया कि सारे भौतिक सृष्टि का नाश होने को भी भगवान के धाम है, लीला से नाश नहीं होता है, तो इन धामों का जैसे वृंदावन मंत्र है, इसकी सीमा या बॉर्डर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? जो अभी तो हमारे भारतीय सरकार जो उसका मैप बनाते हैं, उस आधार पर या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से उसका कोई संबंध है कि धाम किस एरिया का?
प्रश्न ये है कि धाम की सीमा कहां तक होती है? देखिए, जहां जहां शास्त्र में वर्णन है ब्रज की सीमा के बारे में, वहां तक सीमा है। परंतु ये भी कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वृंदावन धाम ये अव्यक्त होता जाएगा, अप्रकट होता जाएगा, मायापुर प्रकट होता जाएगा, क्योंकि ये कलयुग का धाम है वृंदावन। इसलिए गिरिराज गोवर्धन भी एक सरसों के बीज के मात्रा से उस समय से कम होते आ रहा है, कम होते आ रहे, धीरे 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 सब अब प्रकट की अवस्था में ब्रजधाम चल रहा है, ठीक है? अब प्रकट मतलब ऐसा नहीं कि इसका अस्तित्व नहीं होगा धाम का, धाम का अस्तित्व है, लेकिन हमारे स्थूल आंखों के सामने वो प्रकट नहीं है।
सृष्टि का करना, जैसे अभी आगरा का नाश हो जाएगा तो फिर भी मथुरा कैसे रह जाएगा, कौन से लोग बचेंगे उस तरह के लोग, कौन से तरफ इस तरह के लोग, कैसे निर्णय होगा?
नहीं नहीं देखिए ऐसा है, भले ये भूमि नष्ट हो, जिस भूमि में हम बैठे हैं भले वो नष्ट हो, लेकिन वृंदावन नष्ट नहीं होगा। जब ये ब्रह्मांड का नाश होगा तो ये भूमि पृथ्वी लोक तो नष्ट होगा ना, ये वृंदावन अब पृथ्वी लोक पर है ना, तो क्या वृंदावन धाम नष्ट हो जाएगा? नहीं, केवल अप्रकट हो जाएगा। ये भूमि नष्ट हो जाएगी परंतु वृंदावन नहीं नष्ट हो। नहीं क्योंकि वृंदावन तो अप्रकट है। है लेकिन ये तो बाह्य वृंदावन अब हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस जब प्रलय का समय आएगा तो केवल ये ब्रज 84 कोस के भीतर जो है उतने में प्रलय नहीं आएगा। अभी भी प्रलय आ रहा है ना, यमुना जी आ रहा है। बाह्य वृंदावन नष्ट हो जाएगा, जो मूल वृंदावन है सही वाकई जो वृंदावन है वो नष्ट नहीं होगा।
तो कहां रहेगा प्रलय के समय?
भगवान अप्रकट कराकर अपने धाम में, जैसे जब भगवान ले आए थे, कहां से ले आए थे? वो लोग से लेकर आए ना, प्रकट कराया ना भगवान ने अपने ही धाम को। भगवान ने भौतिक सृष्टि के भीतर प्रकट करा दिया। भगवान की अचिंत्य शक्ति है, भगवान के लिए हर चीज संभव है। इतना बड़ा धाम भगवान ने भौतिक सृष्टि के भीतर, वो भी एक छोटे से जगह में फिट कर दिया, प्रकट करा दिया, तो वैसे ही वापस ले जाएंगे भगवान जब चाहे। हाँ मतलब भगवान के आने से पहले पूर्व ये जगह क्या थी? जब श्री कृष्ण आना चाहते थे यहां पर तो उन्होंने तैयारी की कि आने से पहले यहां पर धाम होना चाहिए, तभी वो आएंगे। वो साधारण जगह में तो उतर के नहीं आएंगे। तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी से कहा कि मैं नीचे जा रहा हूं, मेरे साथ चलना। तो राधा रानी ने कहा जब तक गोवर्धन और यमुना नहीं होगी तब मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, गोवर्धन यमुना तो प्रकट हो गए हैं, ठीक है फिर मैं जाऊंगी। तो भगवान ने किसी समय यहां गोवर्धन प्रकट कराया, यमुना जी प्रकट कराया, तो धाम प्रकट हो गया यहां पर। फिर भगवान यहां पर आए। अब गोवर्धन का इतिहास जानते हैं ना, द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे, लेकर आए पुलिस के ऋषि आदि, वो तो कथा आप जानते हैं। तो वो भी एक समय पर हुआ, गोवर्धन कहीं और प्रकट हो गए थे, वहां से फिर यहां चले आए। तो ऐसे भगवान अपने धाम को प्रकट कराते हैं। फिर जब सृष्टि का नाश हो जाता है ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बाद, सारे ब्रह्मांड महाविष्णु में चले जाते हैं और पुनः सृष्टि का जब निर्माण होता है तो फिर हर एक ब्रह्मांड के भीतर पृथ्वी लोक के ऊपर फिर से भगवान वृंदावन धाम को प्रकट करा देते हैं। खाली नहीं होती है, खाली तो नहीं होता है, क्यों नहीं, जब पृथ्वी है तो होगा। जैसे वो कृष्ण के समय जब कृष्ण को अवतीर्ण होना होता है उसके पहले उनके पार्षद तैयारी करते हैं, थोड़े उनके पहले आते हैं, थोड़े उनके साथ में आते हैं, थोड़े उनके बाद में आते हैं, ऐसे तैयारी होती है भगवान श्री कृष्ण की लीला के लिए। ब्रज भूमि ये तो पहले से ही है, यहां पर प्रकट भगवान ने की हुई है, तो ध्रुव महाराज ने मधुबन में तपस्या की थी, इसलिए नारद मुनि ने यहां उनको भेजा था। गोवर्धन की कथा तो पुरानी है, अब की बात नहीं है। ये श्री कृष्ण के यहां पर हुए 5000 वर्ष हुए, लेकिन गोवर्धन के यहां आए तो और बहुत समय हो गया उसके पहले।
जय विजय उनको कहा गया था कि 3 जन्म के बाद आप अपने बदल काम आएंगे, वैकुंठ लोग आएंगे, 3 जन्म वो लोग अक्षर के रूप में लिए यहाँ पर, लेकिन जैसे रावण कुंभकर्ण आए और उसके बीच के अंतर में वो लोग कहाँ गए?
यहाँ भी हुए होंगे, अभी क्या फर्क पड़ता है। जहां भी वो रहे हो हमें वहां जाने की इच्छा नहीं है, है ना। देखो ये काल का समय बड़ा विकट है, ये प्रश्न होता है काल। उस समय हम पृथ्वी लोक के काल के दृष्टि से देख रहे हैं, सारे ब्रह्मांड में भी समय जगह जगह में काल का काल की कल्पना अलग अलग होती है। मृत्यु के बाद भी तो आत्मा को यमलोक जाना पड़ता है, 1 साल लगता है, हमारी तुलना से 1 साल लगता है, वो उस आत्मा की तुलना से नहीं 1 साल लगता है। तो ऐसे यहां समय का परिवर्तन होता है। महाविष्णु का 1 सांस केवल ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते हैं। तो अलग क्षेत्र में जाने से समय का परिवर्तन होता है, समय का विचार ही अलग होता है वहां पर। हाँ कैसा प्रश्न है ये, मतलब आप समझे नहीं, हम कल जो बताए थे नहीं है। अच्छा आप उत्तर दीजिए, आप में से कोई उत्तर दीजिए, आपने प्रश्न समझ लिया इनका? कितने भक्तों ने प्रश्न समझा पहले बोलिए, समझ लिया ना क्या प्रश्न था इनका? पदचिन्हों में चल के तो क्या उत्तर है? देखिए भक्ति के कितने स्तर हैं, साधन और साध्य, ठीक है ना। और साध्य में समझ लीजिए भाव है, हालांकि भाव बीच का है, फिर भी इस भाव में थोड़ा बहुत पकड़ लीजिए। साधन और साध्य, प्रेमा भक्ति को, और भाव भक्ति क्या है, उस प्रेमा भक्ति के द्वार में है, समझ रहे, प्राय संध्या बस प्रवेश हो ही रहा है प्रेम में। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भाव भक्ति को तीसरे ही श्रेणी में पकड़ लिया है, कहा है न ही ये साधन है न साध्य है, बीच का है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि साधन के लिए ये साध्य है भाव भक्ति, तो हमारे लिए तो बहुत ऊंचा है ना। तो साधन मतलब क्या है, कौन करता है ये साधन भक्ति? साधक अभ्यास करता है, अभ्यास के स्तर में। साध्य परिपूर्णता का स्तर है, अभ्यास का स्तर नहीं है। प्रैक्टिस और परफेक्शन, अभ्यास और परिपूर्णता। साधन भक्ति की अवस्था में साधक कहलाता है व्यक्ति, भक्त। वो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, लेकिन जब वो अभ्यास परिपूर्ण हो जाता है तो वो सिद्ध हो जाता है, तब वो साध्य भक्ति में स्थित होता है। तो रागानुगा भक्ति साधन है या साध्य है? बोलिए। साधन है, फिर साधक गोलोक वृंदावन जा सकता है? नहीं, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं जा सकता? पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है। तो पहले पूर्णता प्राप्त करना है, उसके बाद गोलोक वृंदावन जा सकता है। तो रागानुगा से वो फिर वो भाव भक्ति के स्तर में आएगा, फिर वो प्रेमा भक्ति के स्तर में आएगा, फिर वो जाएगा वापस गोलोक वृंदावन। तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके ही व्यक्ति गोलोक वृंदावन लौट के जा सकता है। वस्तु सिद्धि, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, स्मरण अवस्था, पांच स्मरण की अवस्थाएं हैं ना, इनमें एक तो स्वरूप सिद्धि है समाधि की अवस्था में या आपन दशी की दशा की अवस्था में, और संपत्ति दशा में क्या है, वस्तु सिद्धि। जब वो वास्तव में गोलोक वृंदावन जाता है, उसे आध्यात्मिक देह प्राप्त होता है। हाँ, वहां रह के देखो, रागानुगा, ये रागानुगा भक्ति क्या होती है, वो साधन की अवस्था होती है। परंतु जो ऐसे भगवान के नित्य पार्षदों के पदचिन्हों का अनुसरण करने की जो विधि है, वो दोनों अवस्थाओं में है। समझ गए आप? रागानुगा भक्ति के भीतर जो विधि है, कौन सी विधि? हाँ, किसी एक नित्य पार्षद के पदचिन्हों का अनुसरण करना, जो कि रागानुगा भक्ति की एक विधि है, वो साध्य अवस्था में भी है, परंतु उस समय वो रागानुगा नहीं कहलाती है, वो राग भक्ति है। क्योंकि उस समय वो ग्वाल बाल बन जाता है, गोपी बन जाते, जो भी है, परंतु फिर भी जैसे अगर कोई मंजरी है, तो वो मंजरी है, वो किसी एक मंजरी या किसी एक सखी का अनुसरण करेगी, उनकी सेवा करते रहेगी। रागानुगा नहीं है वो। हाँ, साधन है। लेकिन जो मूल विधि है, मूल विधि क्या है, वो रागा वहां जाकर भी रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो भक्त है, अभी भी सुबल के पदचिन्ह में ही चलता है, या रति मंजरी के पदचिन्ह में ही चलती है। हाँ, ये साधन सिद्ध है और वो नित्य सिद्ध है। हाँ, वो रागानुगा नहीं कहलाता है। रागानुगा साधन की अवस्था है। रागानुगा के लक्षण है ना, आप भक्ति रसामृत सिद्धु में पहुंचेंगे, इसकी चर्चा में जब आएगी ना, तो रागानुगा के लक्षण आप पढ़ेंगे। रागानुगा भक्ति जो है, वो भक्ति के नौ स्तर हैं। कहां तक है? आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो रागानुगा भक्ति कहां तक है? आसक्ति, एक भाव है ना, आसक्ति के बाद भाव है। तो रागानुगा भक्ति आसक्ति तक है, उसके बाद वो रागानुगा भक्ति भाव भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। रागानुगा भक्ति का साध्य है भाव, क्योंकि रागानुगा भक्ति भी साधन भक्ति है ना। स्पष्ट है ना? कोई द्वंद्व नहीं अभी? रागात्मिका और रागानुगा में अंतर क्या है? कल चर्चा हुई थी ना आपको, उनकी क्या है भक्ति? जो वृंदावन के मूल निवासी हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनकी भक्ति क्या कहलाती है? रागात्मिका भक्ति। और जो उनका अनुगमन करते हैं यहां रह के, उनकी भक्ति को क्या कहते हैं? रागानुगा भक्ति। एक सिद्ध है, साध्य अवस्था है, नित्य सिद्ध अवस्था, और दूसरी साधन अवस्था है। ठीक है, भाव, और भाव से प्रेम। ठीक है,
उनके भक्ति को भाव या प्रेम नहीं कहते, राग को
कहते। वो तो प्रेम के भी तो कई स्तर होते हैं ना, आगे प्रेम के भी और स्तर, ऊंचे 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 स्तर होते हैं। नौ स्तरों में अंतिम स्तर प्रेम है, हमारे लिए वो अंतिम है, लेकिन प्रेम भक्ति को प्राप्त करके प्रेम भक्ति के अंदर भी और आठ स्तर हैं। लेकिन वो सब परिपूर्णता के स्तर हैं। वो साध्य अवस्था है, सिद्ध पुरुष है वहां, लेकिन उसके पहले जो होता है वो साधन अवस्था होता है।
वहां भी ऐसे प्रगति होते रहता है।
प्रेमा भक्ति अनंत है, प्रेमा भक्ति का विकास अनंत चलता रहता है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गया ना? हाँ माता जी। प्रश्न ये है कि जब हम अपने शहरों में वापस जाते हैं, जाएंगे, और हम ये सुनते हैं कि जो कृष्ण का मंदिर है वो भी वैकुंठ जगत है, वृंदावन है, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं कि भगवान की अर्चा विग्रह तो साक्षात श्री कृष्ण हैं, परंतु मंदिर का परिसर जो है वो वृंदावन है, ये कैसे समझ सकते हैं जबकि मंदिर के बाहर शहर में बहुत कुछ चल रहा होता है? तो हमें ये जानना चाहिए कि वृंदावन क्या है, वृंदावन की परिभाषा क्या है। वृंदावन की परिभाषा है जहां पर श्री कृष्ण की सतत सेवा चल रही हो, इस भाव में वो वैकुंठ जगत है, वो वृंदावन है। तो अगर मंदिर में भी सेवा नहीं चल रही हो तो फिर वो वैकुंठ या वृंदावन नहीं हो जाता। ठीक है, अंतिम प्रश्न किसी ने हाथ उठाया था ना, ये क्या है? क्या है, क्या है?
ये जो अभ्यास पुस्तिका दी हुई है। अच्छा, आपके देशामित्र से संबंधित ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब लिखने होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखा जाए तो इसमें क्या
पाठ्यक्रम 11 है, पाठ 8, ब्रज धाम के अलौकिक क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को उनके पार्षद के भावना सदृश व्यक्ति को अपनी सेवा अर्पित करनी चाहिए तथा उसे अपने आप को किस विशेष पार्षद के अधीनस्थ प्रत्यक्ष मार्गदर्शन हेतु कर देना चाहिए तथा उसके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। यह प्रणाली साधना बद्ध स्थिति में आध्यात्मिक अभ्यास का निष्पादन तथा साध्य भगवत साक्षात्कार दोनों ही स्तर स्थिति में प्रयोज्य होता है, तभी कोई सिद्ध पुरुष होता है। भिन्न भिन्न प्रकार की साधना की व्याख्या करें। उपरोक्त उद्धरण उनमें से किसके संदर्भ में दिया गया है? हाँ, तो यहां प्रभुपाद जी ने दिए हैं ना उदाहरण, जैसे जो सख्य रस में करना चाहते हैं वो ऐसे सुबल या बलभद्र इनके पद चिन्हों में चलेंगे, जो शांत रस में करना चाहते हैं कृष्ण की बांसुरी अच्छा प्रश्न ये है कि आप किसमें करना चाहते हैं?
ऐसा समझ ऐसा अंडरस्टैंडिंग हमारी हो रही है प्रश्न करके अंदर,
शायद उनको पूछे कि किस भाव से ये प्रश्न किया गया है कि हमें पर हमारी पसंद इस समय की बात हो रही है या एक विशेष पूछ लीजिए, स्पष्टीकरण करा दीजिए। ये रागानुगा से संबंधित है,
इसमें वो चीज नहीं है जो इसमें लिखी हुई।
हाँ ये रागानुग से संबंधित है, ठीक है।
इंग्लिश में हिंदी
ठीक है, अभी अच्छी तरह से वैदिक भक्ति करिए, ठीक है। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, कल अंतिम श्लोक होगा, 11वां श्लोक। श्री उपदेशामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय।